ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ಓಂ ನಮೋ ಭಗವತೇ ವಾಸುದೇವಾಯ. ನಾರಾಯಣಂ ನಮಸ್ಕೃತ್ಯ ನರಂ ಚೈವ ನರೋತ್ತಮಂ ದೇವೀಂ ಸರಸ್ವತೀಂ ವ್ಯಾಸಂ ತತೋ ಜಯಮುದೀರಯೇತ್. ನಷ್ಟಪ್ರಾಯೇಷು ಅಭದ್ರೇಷು ನಿತ್ಯಂ ಭಾಗವತ ಸೇವಯಾ ಭಗವತಿ ಉತ್ತಮ ಅಶ್ಲೋಕೆ ಭಕ್ತಿರ್ಭವತಿ ನೈಷ್ಠಿಕಿ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶ್ರೀಮದ್ ಭಾಗವತಂ ಇಸ್ಕಂದ ಶಾತ್ ಅಧ್ಯಾಯ ಶಾತ್ ಶ್ಲೋಕ ಸಂಖ್ಯಾ 30 ಮತ್ತು 31. ದೋ ಶ್ಲೋಕ ಸಾಥ್ ಮೇ ಹೈ. ಬೋರ್ಡ್ ಪೆ 30 ನಂಬರ್ ಶ್ಲೋಕ ಲಿಖಾ ಹೈ. इसलिए हम इसकी आवृत्ति करेंगे.
गुरु शुश्रूषया भक्त्या सर्वलब्धार्पणेन च संगेन साधु भक्तानां ईश्वराराधनेन च. ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಲಬ್ಧಾರ್ಪಣೇನ ಚ ಸಂಗೇನ ಸಾಧು ಭಕ್ತಾನಾಂ ಈಶ್ವರಾರಾಧನೇನ ಚ. ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷಯಾ ಭಕ್ತ್ಯಾ ಸರ್ವಲಬ್ಧಾರ್ಪಣೇನ ಚ ಸಂಗೇನ ಸಾಧು ಭಕ್ತಾನಾಂ ಈಶ್ವರಾರಾಧನೇನ ಚ.
ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಮಾತಾಜಿ ಹರೇ ಕೃಷ್ಣ. ಶಬ್ದಾರ್ಥ ಗುರು ಶುಶ್ರೂಷಯ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕ ಗುರು ಕಿ ಸೇವಾ ದ್ವಾರ ಭಕ್ತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧಾ ತಥಾ ಭಕ್ತಿ ಸೆ ಸರ್ವ ಸಮಸ್ತ ಲಬ್ಧ ಭೌತಿಕ ಲಾಭೋ ಕೆ ಅರ್ಪಣೇನ ಅರ್ಪಣ ಸೆ ಚ ತಥಾ ಸಂಗೇನ ಸಂಗತಿ ಸೆ ಸಾಧು ಭಕ್ತಾನಾಂ ಭಕ್ತೋ ತಥಾ ಸಾಧು ಪುರುಷೋ ಕಿ ಈಶ್ವರ ಪೂರ್ಣ ಪುರುಷೋತ್ತಮ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಆರಾಧನೇನ ಪೂಜಾ ಸೆ ಚ ತಥಾ ಶ್ರದ್ಧಯಾ ಅತ್ಯಂತ ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕ ತತ್ಕಥಾಯಾಂ ಭಗವಾನ್ ಕಿ ಕಥಾಓ ಮೇ ಚ ತಥಾ
कीर्तन यशोगवान द्वारा गुण कर्मणाम भगवान के दिव्य गुणों तथा कर्मों का तत् उसके पादाम्बुरु चरण कमलों पर ध्यानात् ध्यान से तत् उसका लिंगम स्वरूप अर्चा विग्रह इच्छा दर्शन अरढ़ आदि भी तथा पूजा द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की अनुवाद। मनुष्य को प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए और अत्यंत भक्ति तथा श्रद्धा से उसकी सेवा करनी चाहिए। उसके पास जो भी हो उसे गुरु को अर्पित करना चाहिए और संत पुरुषों तथा भक्तों की संगति में भगवान की पूजा करनी चाहिए। श्रद्धा पूर्वक भगवान के यश का श्रवण करना चाहिए। भगवान के दिव्य गुणों तथा कार्यकलापों का यशोगान करते रहना चाहिए। सदैव भगवान के चरण कमलों का ध्यान करना चाहिए तथा शास्त्र एवं गुरु के आदेशानुसार भगवान के अर्चा विग्रह की पूजा करनी चाहिए। तात्पर्य, पिछले श्लोक में बताया गया है कि जिस विधि से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रति प्रेम तथा स्नेह तुरंत बढ़े वह इस भव बंधन से मुक्त होने के हजारों उपायों में सर्वश्रेष्ठ है। कहा गया है धर्मस्य तत्त्वम निहितम गुहायाम। वास्तव में धर्म के सिद्धांतों का सत्य अत्यंत गुह्य होता है, फिर भी यदि कोई धर्म के नियमों को वास्तव में स्वीकार कर ले तो इसे सरलता से समझा जा सकता है। जैसा कि कहा गया है धर्मम तु साक्षात भगवत प्रणीतम। धर्म की विविधि परमेश्वर द्वारा प्रतिपादित है क्योंकि वे सम परम सत्ता है। पिछले श्लोक में भी इसे भगवतोदित शब्द द्वारा सूचित किया गया है। भगवान के आदेश अच्युत हैं और उनके लाभ पूर्णतः निश्चित हैं। उनके आदेशानुसार धर्म का पूर्ण स्वरूप भक्ति योग है, जैसा कि इस श्लोक में बताया गया है। भक्ति योग का अभ्यास करने के पूर्व प्रामाणिक गुरु स्वीकार करना चाहिए। श्री रूप गोस्वामी अपने भक्ति रसामृत सिंधु 1.2.74.75 में उपदेश दिया है, गुरु पादाश्रय तस्मात् कृष्ण दीक्षा दिशिक्षणम विश्रम्भेण गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम सद्धर्म परीक्षां भोगा दित्यागह कृष्ण स हेतवे। मनुष्य का पहला कर्तव्य है कि प्रामाणिक गुरु स्वीकार करे। छात्र या शिष्य को अत्यंत जिज्ञासु होना चाहिए। उसे सनातन धर्म के विषय में पूर्ण सत्य जानने के लिए उत्सुक रहना चाहिए। गुरु शुश्रूषया शब्दों का अर्थ है कि वह स्वयं गुरु को शारीरिक सुविधाएं प्रदान करके जैसे स्नान करते वस्त्र बदलते खाते सोते समय सहायता पहुंचाकर उनकी सेवा करे। यह गुरु शुश्रूषणम कहलाता है। शिष्य दास की भांति गुरु की सेवा करे और उसके पास जो कुछ भी हो उसे गुरु को समर्पित कर दे। प्राण है अर्थ है दिया हवाचा। प्रत्येक व्यक्ति के पास जीवन संपत्ति बुद्धि तथा वाणी होती है और इन शब्दों को गुरु के माध्यम से पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को अर्पित कर देना चाहिए। गुरु को सब कुछ कर्तव्य के रूप में अर्पित कर देना चाहिए, किंतु यह भेंट भौतिक प्रतिष्ठा प्राप्त करने के लिए बनावटी ढंग से नहीं अपितु हृदय से की जानी चाहिए। यह भेंट अर्पण कहलाती है। इसके साथ ही शिष्टाचार सीखने तथा भक्ति का समुचित आचरण करने के लिए उसे भक्तों तथा संत पुरुषों के साथ रहना चाहिए। इस संबंध में श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि गुरु को जो कुछ भी अर्पित किया जाए वह प्रेम तथा स्नेह पूर्वक किया जाए, भौतिक स्तवन के लिए नहीं। इसी प्रकार यह भी संस्तुत की गई है कि मनुष्य भक्तों की संगति करे, किंतु उसे तनिक विवेक से काम लेना होगा। वास्तव में साधु को अपने आचरण में संत सदृश होना चाहिए। साधव सदाचारः। जब तक वह आदर्श आचरण में दृढ़ नहीं रहता उसका साधु पद पूर्ण नहीं है। अतएव एक वैष्णव या साधु को आदर्श आचरण में दृढ़ और पूर्ण रहना चाहिए। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं कि वैष्णव का सम्मान वैष्णव के योग्य होना चाहिए, जिसका अर्थ है कि उसकी सेवा की जानी चाहिए तथा स्तवन किया जाना चाहिए। किंतु यदि वह संगति के उपयुक्त व्यक्ति नहीं है तो उसकी संगति नहीं करना चाहिए। ओम अज्ञानतिमिरांधर्ष ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितमेन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदांतिकम्। वंदे हम श्री गुरु श्री उत्पद कमलम श्री गुरुन वैष्णवांश श्री रूपम सागर जातम सहगण रघुनाथान्वितम तम सजीवम शाद्वैतम शावधूतम परिजन सहितम श्री कृष्ण चैतन्य देवम श्री राधा कृष्ण पादा सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाशादि श्री गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। श्रीमद् भागवतम के पहले स्कंद में सूत गोस्वामी श्रीमद् भागवतम की महिमा का गुणगान करते हुए कहते हैं, अनर्थो पश्मम साक्षात भक्ति योगम अधोच्छजे लोकानाम जानतो विद्वान चक्र शाश्वत सात्वत सन्निताम। तो सूत गोस्वामी कह रहे हैं, विद्वान चक्र सात्वत सन्निताम, विद्वान चक्र अर्थात समस्त विद्वानों में सर्वश्रेष्ठ कौन? व्यास देव जी। विद्वान चक्र जो कि भगवान के साहित्यिक अवतार हैं, तो ऐसे विद्वान मुनि श्री व्यास देव ने सात्वत सन्निताम, सात्वत सन्निताम मतलब परम सत्य का प्रतिपादन करने वाले संहिता की रचना किया, अर्थात इस श्रीमद् भागवतम की रचना किया। विद्वान चक्र सात्वत सन्निताम, इस सात्वत ग्रंथ की रचना किया। क्यों किया? तो बता रहे हैं, अनर्थो परमो साक्षात, कि जो जीव के अनर्थ हैं, हम अनर्थ के विषय में चर्चा करते रहते हैं कि अनर्थ के कारण हमारी भक्ति नहीं हो रही है, अनर्थ के कारण हम लोग फंसे हुए हैं, अनर्थ के कारण हमारा मन नहीं लग रहा है। तो अनर्थ की कई सारी व्याख्या है, लेकिन यदि मानो व्यास जी से कोई पूछे कि वास्तव में अनर्थ क्या है, किस अनर्थ के उपशमन के लिए आपने भागवतम की रचना की, अनर्थ सबसे बड़ा जीव का अनर्थ क्या है संसार में, तो उस संदर्भ में बता रहे हैं, यथा सम्मोहितो जीवम आत्मानाम त्रिगुणात्मकम परो अपि मनुते अनर्थम तत्कृतम चाभिपद्यते। तो सबसे बड़ा अनर्थ क्या है जीव का, तो बता रहे हैं आत्मानाम त्रिगुणात्मकम, कि जो जीव है आत्मा है अपने आप को इस संसार में तीन गुणों की उपज मानता है और तीन गुणों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है इस संसार में आके, लेकिन वास्तव में उसका क्वालिटी क्या है, उसका गुण क्या है, तो बता रहे हैं परो अपि, जो जीव है इससे परे है, जीव इस जगत का नहीं है, जीव इस तीन गुणों का नहीं है, उसका अनर्थ सबसे बड़ा क्या है कि आत्मा नाम त्रिगुणात्मकम, कि जीव अपने आप को तीन गुणों का मान लिया है, तीन गुणों की उपज मान लिया है, उससे सामंजस्य स्थापित कर लिया है, लेकिन परो अपि वो उससे परे है। मनुते अनर्थम बता रहे हैं, क्लियर बता रहे हैं मनुते अनर्थम, ये मान लिया है जीव कि मैं इस तीन गुणों की उपज हूं, एकदम सामंजस्य स्थापित कर लिया है, लेकिन परो अपि वो उससे परे है, वो उससे दिव्य है, भगवान का शाश्वत अंश है। तो भगवान के अंदर जो दिव्य गुण हैं, जीव के अंदर वही गुण हैं, लेकिन भौतिक गुणों के संसर्ग में आने के कारण वो प्रकृति के तीनों गुणों के साथ सामंजस्य स्थापित कर लिया है, और जितने भी अनर्थ हैं अब क्यों स्थापित कर लिया है, तो बता रहे हैं यथा सम्मोहितो जीव, क्योंकि जीव इस संसार में भगवान की माया शक्ति के द्वारा मोहित हो गया है। तो भगवान श्री श्री राधा राज बिहारी भगवान की, श्री श्री सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, नेताई गौर सुंदर भगवान की जय। तो जीव भगवान का शाश्वत अंश होने के कारण प्रकृति के तीन गुणों से परे है, लेकिन भगवान की माया शक्ति से मोहित होने के कारण अपने को तीन गुणों का मान लेता है। ये जीव का सबसे बड़ा अनर्थ है, और जितने भी अनर्थ हैं, बाकी के अनर्थ हैं, सब इसके पीछे हैं। जीव इस जगत में है, ये सबसे बड़ा दुखद स्थिति है आत्मा का, और जितने भी अनर्थ है सब इसके पीछे हैं। यथा सम्मोहितो जीवो, और ऐसे अनर्थ का उपशमन करने के लिए, ऐसे अनर्थ का उपशमन करने के लिए श्री व्यास देव ने इस सात्वत ग्रंथ की रचना किया, जिससे जीव अपने मूल स्वरूप को समझ जाए कि वो भगवान का है, और भगवान की सेवा करना है जीव का नित्य धर्म है। इस चीज को समझाने के लिए श्री व्यास देव ने इस श्रीमद् भागवतम की रचना की। तो ऐसे श्रीमद् भागवतम पे बोलने से पहले श्री व्यास देव के चरणों में श्रीमद् भागवतम पे और यहाँ पे उपस्थित सभी सीनियर वैष्णव के चरण कमलों में प्रार्थना है कि वो मुझे आशीर्वाद दे, ताकि मैं अपने हृदय के अनर्थ को दूर करने के लिए, अपने हृदय के शुद्धिकरण के लिए ऐसे सात्वत ग्रंथ पे कुछ बोल सकूं। हरे कृष्णा। तो पीछे हम श्रवण करते आ रहे हैं इस प्रसंग में कि प्रहलाद महाराज के गुरुजन कभी कभी शिक्षा गुरु कभी कभी अपने जब कभी कभी अवकाश होता था तो गृह कार्य के लिए वो घर चले जाते थे। उस समय जब प्रहलाद महाराज के और सहपाठी लोग थे तो प्रहलाद महाराज को बुलाते थे, और प्रहलाद गुरुजी नहीं है, छुट्टी पे गए हैं, थोड़ा टाइम पास करते हैं, थोड़ा टीवी देख लेते हैं, थोड़ा कोई खेल में आनंद लेते हैं, तो प्रहलाद महाराज को बुलाया करते थे, समवयस्क छात्र थे। लेकिन प्रहलाद महाराज की रुचि उन सब बालकों के द्वारा कही गई बातों में नहीं होता था। वो खेलने के लिए नहीं जाया करते थे, उनको आनंद नहीं आता था, वो नहीं जाया करते थे। क्यों नहीं जाया करते थे? प्रभुपाद जी बहुत सुंदर तात्पर्य में लिख रहे हैं 7.5.55 के तात्पर्य में कि अन्य विद्यार्थी धर्म अर्थ तथा काम के उपयोग द्वारा भौतिक जीवन का भोग करने में अत्यधिक उन्नत थे, क्योंकि उनको गुरु द्वारा वही शिक्षा दी जा रही थी, इसलिए उनकी मति थी सांसारिक कार्यों में। और क्यों नहीं जा रहे थे? क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति में स्थित थे, जैसा कि हम सुन चुके हैं पहले के प्रवचन में, जब उनके पिताजी उनसे पूछते हैं उत्तम विद्या के विषय में, तो सब प्रवचन पहले कर चुके हैं, श्रवणम कीर्तनम विष्णु शरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दासम साख्यम आत्म निवेदनम, कि भगवान की विष्णु की भक्ति ही सर्वश्रेष्ठ है। तो भगवान की विशुद्ध भक्ति में स्थित थे प्रहलाद महाराज। तो भक्ति की एक विशेषता बताई गई है कि जिस प्रकार भक्ति का लक्षण क्या है, तो जिस प्रकार यदि कोई व्यक्ति बहुत भूखा है, बहुत भूख लगी है, और उसको यदि भोजन दिया जाए खाने के लिए, तो व्यक्ति जब भोजन करता है तो उसके साथ तीन चीजें घटती हैं, एक साथ में तीन चीजें घटती हैं। क्या क्या? तो बोलते हैं तुष्टि पुष्टि क्षुतपाय। अर्थात व्यक्ति बहुत भूखा है, यदि उसको खाने के लिए दिया जाए तो जब वो खाना प्रारंभ करता है तो प्रत्येक कौर पे उसको तुष्टि मिलती है, आनंद मिलता है, तुष्टि होती है, तुष्टि होती है और पुष्टि होती है। जब व्यक्ति खाया नहीं रहता है तो हम बोलते हैं ना, अरे क्या तुम्हारा चेहरा सूखा सूखा है, खाया नहीं है क्या दिन भर से, राइट? ताकत नहीं रहती है, एनर्जी नहीं रहती है, चेहरे पे चेहरा पूरा सूखा रहता है। तो जब व्यक्ति खाता है तो उसकी तुष्टि होती है, और तुष्टि के साथ दूसरा चीज क्या होता है? पुष्टि। उसको एनर्जी मिलती है, प्रत्येक कौर पे उसको एनर्जी मिलती है, ताकत मिलती है। और तीसरा छुत पाया, और जब भूख की तृष्णा होती है, हाँ,
एक समय ऐसा आता है व्यक्ति खाता है लेकिन एक समय ऐसा आता है कि उसको रसगुल्ला भी खाने के लिए दिया जाए तो नहीं खाएगा, क्योंकि उसका जो छूता था, जो छुती थी, जो लालसा थी वो खत्म हो गई खाने की। तो तीन चीजें हुई, तुष्टि हुआ, पुष्टि हुआ और उसको छुत पाया बोलते हैं, कि उसकी जो उत्कंठा थी खाने की वो खत्म हो जाती है। एक साथ तीन चीजें घटित होती हैं। इसी प्रकार यदि कोई भक्ति करता है, भगवान की शुद्ध प्रेमा भक्ति प्राप्त कर लिया है, तो उसके जीवन में तीन चीजें होती हैं और वो भी एक साथ होती हैं। वो क्या होता है, बोलते हैं भक्ति का लक्षण बताया गया है, शोक मोह भयापहा। शोक मोह भयापहा, कि जब भगवान की भक्ति कोई जीवात्मा करता है तो उसके साथ तीन चीजें घटती हैं, शोक मोह भयापहा। शोक बोलते हैं कि अतीत में कोई घटना हमारे जीवन में घट चुकी है और उसको याद करके, उसको रिमेम्बर करके जीव दुखी होता है। कोई चीज हमारे साथ घट चुकी है, भूतकाल में घटना घट चुकी है और उसको सोच सोच के व्यक्ति रोता है, विलाप करता है, नींद नहीं आती है, तो उसको बोलते हैं शोक। शोक करता है व्यक्ति, विलाप करते रहता है सोच सोच के कि अरे हाय हाय ऐसी घटना घट गई, ये चले गए, इतना लॉस हो गया, व्यक्ति सोचते रहता है शोक। तो यदि कोई भगवान की भक्ति करता है तो वो शोक नहीं करता है। दूसरा मोह क्या है, मोह है शोक और भय। भय बोलते हैं भविष्य की चिंता करके व्यक्ति दुखी होता है कि भविष्य में क्या होगा, कैसे होगा, तो उसकी चिंता करके व्यक्ति भय में रहता है। शोक और भय के बीच में मोह होता है, जो मैं और मेरा के कारण उत्पन्न होता है। शोक और मोह के बीच में मैं और मेरा का संबंध है, जिसमें जीव पूरा फंसा हुआ है। लेकिन यदि कोई भक्ति करता है तो भक्ति करने के साथ साथ व्यक्ति का शोक, मोह और भय तीनों धीरे धीरे खत्म हो जाते हैं। चूंकि 55 नंबर श्लोक में, 53 नंबर श्लोक में यहां बता रहे हैं सुखदेव गोस्वामी कि जो उनके गुरु महाराज लोग शिक्षा देते थे विद्यार्थियों को, वो शिक्षा कैसा था, त्रिवर्ग शिक्षा था, धर्म अर्थ और काम की शिक्षा देते थे। उसे मोक्ष और मुक्ति और जीवन के चरम उद्देश्य को नहीं बताया गया था। वो जो विद्या थी, वो जो शिक्षा थी, वो द्वंद्व से युक्त थी, अपने और पराये का बोध कराने वाली शिक्षा थी। और प्रहलाद महाराज का उसमें थोड़ा सा भी इंटरेस्ट नहीं था, प्रहलाद महाराज की थोड़ी सी मति नहीं लगती थी, क्योंकि प्रहलाद महाराज भगवान की विशुद्ध भक्ति में स्थित हो चुके थे, वो सब जगह संभावना का असर देखते थे। तो ऐसे लक्षण संयुक्त होने के कारण प्रहलाद महाराज का भौतिक, किसी भी भौतिक क्रियाकलाप में, क्योंकि वो मैं और मेरा के द्वंद से भी ऊपर उठ चुके थे, शोक मोह और भय, तो मोह से भी ऊपर जा चुके थे, इसलिए किसी भी भौतिक क्रियाकलाप में उनका कोई रुचि नहीं था, किसी भी खेल कूद में उनका रुचि नहीं था, क्योंकि वो उत्तम कोटि के रस का आनंद ले रहे थे। वो उत्तम कोटि के रस का आनंद ले रहे थे और उन्होंने एक चीज और देखा उसी समय कि जो उनके शिक्षा गुरु बालकों को शिक्षा दे रहे हैं, धर्म अर्थ काम की जो शिक्षा दे रहे हैं, वो शिक्षा ले तो रहे हैं शिष्य लोग, लेकिन ये जो बालक की मति है ये बहुत ही अभी छोटे हैं, इनकी मति इतनी बिगड़ी नहीं है, इतनी दूषित नहीं है, उनकी शिक्षा का इतना गहरा प्रभाव नहीं है, इसलिए यदि प्रचार किया जाए, प्रयास किया जाए, तो इनकी मति को ठीक किया जा सकता है। जैसे प्रभुपाद जी जब प्रचार करने के लिए गए विदेशों में, तो इस्कॉन पे एक केस चला। क्या केस चला, कि हम लोगों का ब्रेन वॉश कर रहे हैं। प्रभुपाद जी ने बोला हम ब्रेन वॉश नहीं कर रहे हैं, हम ब्रेन दे रहे हैं, ब्रेन वॉश करेंगे तब, जब ब्रेन हो तब तो हम ब्रेन वॉश करेंगे, ब्रेन है ही नहीं, ब्रेन सब खत्म कर दिया गया है। तो प्रभुपाद जी ने बुद्धि दिया, गीता और भागवत के माध्यम से शिक्षा दिया हम लोगों को, और हम लोग जो भक्ति कर रहे हैं प्रहलाद महाराज के अनुगत्य में भक्ति कर रहे हैं। प्रहलाद महाराज भी एक आचार्य हैं, एक महाजन हैं, महाजनों यानी गतः स पंथा। तो जो भी प्रहलाद महाराज की परंपरा में आने वाले भक्त हैं, उनका पहला कार्य है प्रचार करना। और आज भी ऐसी शिक्षा पद्धति दी जा रही है, जैसे कि हम प्रभुपाद जी के लेक्चर में सुना करते हैं, प्रभुपाद जी आज की आधुनिक शिक्षा पद्धति का कितना ज्यादा निंदा करते हैं, क्योंकि आज की जो शिक्षा पद्धति हमको पढ़ाई जा रही है ये संत अमर की शिक्षा पद्धति है, धर्म अर्थ और काम,
अपना पराया ये सबका बोध कराने वाली विद्या दी जा रही है। तो प्रहलाद महाराज ने क्या कहा, क्या देखा हो सर कि अभी इन बालकों की मति इतनी बिगड़ी नहीं है, यदि प्रयास किया जाए तो उनको सही रास्ते पे लाया जा सकता है। और शायद प्रभुपाद जी इसीलिए प्रीचिंग पे जोर देते हैं, यूथ प्रीचिंग करो, यूथ प्रीचिंग करो, क्योंकि अभी ये द्वंद में फंसे हैं, क्या है, क्या सही है, क्या गलत है। जो पहले पकड़ लिया, जो अच्छे से दे लिया, वो ग्रहण कर लेंगे, क्योंकि उनकी बुद्धि अभी शार्प है, समझने लायक बुद्धि है। एक बार जब पक गई, 40-50 तक पहुंच गए, तो उनको समझाना, उनको रास्ते पे लाना बहुत मुश्किल है। अभी उनको समझाया जा सकता है, इसलिए यूथ प्रीचिंग करो, कॉलेज में प्रीचिंग करो, लड़कों को बताओ। क्यों? क्योंकि जो भी उनको शिक्षा पद्धति जा रही है वो संत अमर के जैसी शिक्षा पद्धति है, जो कि आध्यात्मिक चेतना से शून्य है। तो प्रहलाद महाराज ने यह देखा कि वास्तव में अभी अवसर है, भले ही हमारे गुरु महाराज इन लोग को पढ़ाए हैं, लेकिन इन लोग की बुद्धि निर्मल है, दोष अभी नहीं आई है, क्योंकि बुद्धि छोटी है, इसलिए ये सब बुराइयों ग्रहण नहीं कर सके हैं। और यदि प्रयास किया जाए तो उनकी बुद्धि को चेंज किया जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। इसके बाद प्रहलाद महाराज ने उन सहपाठियों को बुलाया, और प्रहलाद महाराज का प्रभाव था, एक राजा के लड़के थे, सब लोग डरते भी थे, सुनते भी थे, और प्रहलाद महाराज ने इसका पूरा उपयोग किया, अपनी बुद्धि का, अपने ऐश्वर्य का, अपने बल का, और फिर शिक्षा देना प्रारंभ किया, उनको बताना चालू किया, क्लास देना प्रारंभ किया। और बहुत ही सुंदर यह अध्याय 7 चल रहा है, अध्याय 6 का नाम है प्रहलाद महाराज द्वारा अपने असुर सहपाठियों को उपदेश। तो प्रहलाद महाराज ने उपदेश देना प्रारंभ किया, और उपदेश की शुरुआत करते हैं कि मनुष्य जीवन की सार्थकता क्या है, क्यों इस मनुष्य जीवन को व्यर्थ करते हो, बहुत ही सौभाग्य से मनुष्य जन्म मिला है, कौमारम आचरित प्राज्ञो धर्मान भागवतानी है, दुर्लभम मानुषम जन्म तदपि अध्रुवम अर्थदम, किससे परम अर्थ की कमाई की जा सकती है, जो परचम पुरुषार्थ है भगवान कृष्ण का प्रेम, इसको प्राप्त किया जा सकता है, इसके लिए प्रयास करो। तो मानव जीवन की उपयोगिता बताते हैं। इसके बाद चूंकि मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी लोग इस संसार में आने के बाद भौतिक सुख में फंस जाते हैं, क्यों नहीं भजन हो पाता है, क्यों पंचम पुरुषार्थ की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्यों कृष्ण प्रेम की प्राप्ति नहीं कर पाते हैं, क्योंकि उनका प्रेम डाइवर्ट हो जाता है, प्रेम रूपांतरित हो जाता है। मनुष्य जीवन मिलने के बाद भी चूंकि जीव की इतनी अनादि इच्छा है संसार में सुख भोग प्राप्त करने की, इसलिए जीव फिर उसी संसार के सुखों में रमने लगता है। तो पहली शिक्षा बताते हैं कि मनुष्य जीवन की उपयोगिता क्या है, दूसरा बताते हैं कि क्यों मनुष्य जीवन प्राप्त करने के बाद इस संसार में भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए हमको अहर्निश कठिन श्रम नहीं करना चाहिए, मेहनत नहीं करना चाहिए, और इस प्रकार आध्यात्मिक सुख और भौतिक सुख के विषय में वर्णन करते हैं कि आध्यात्मिक सुख क्या है और भौतिक सुख क्या है, और क्यों हमको बहुत ही अहर्निश कठिन श्रम नहीं करना चाहिए इस संसार में सुखी होने के लिए। कभी कभी मानो जो विद्यार्थी लोग हैं, सहपाठी लोग हैं प्रहलाद महाराज के, वो उनसे पूछे हैं कि देखो हम लोग को तो पढ़ाया गया कि जो धर्म है वो चौथेपन की चीज है, ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ संन्यास, तो भक्ति जो है वो कर लेंगे, बाद में कर लेंगे, जैसा कि हम सुनते रहते हैं, अभी क्या जरूरी है, अभी तो उम्र है, कमाने का, खाने का, कुछ करके दिखाने का, कुछ बन के दिखाने का, और उसके बाद भक्ति तो हम कर लेंगे, अभी क्या हो सकता है, इतना इमरजेंसी क्या है। क्योंकि प्रहलाद महाराज ने जोर दिया था कौम आरम, बहुत इमरजेंसी है, 5 साल के बाद चालू कर दो, इंतजार मत करो। हाँ, और इसके बाद भौतिक और आध्यात्मिक सुखों के बीच का वर्णन करते हैं, और फिर बताते हैं कि क्यों अहर्निश कठिन श्रम नहीं करना चाहिए भौतिक संसार में सुख प्राप्त करने के लिए। हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं भौतिक जगत में, कैसे, तथा कथित परिवार, स्त्री, बच्चे, पुत्र, समाज, देश में के मोह में पड़ के हम इन्हीं लोगों के बीच में सुख प्राप्त करने की कोशिश करना चाहते हैं, और हम कहते हैं कि हम भक्ति कर लेंगे, अभी जो जीवन मिला है आनंद लेने का आनंद ले लेते हैं, फिर बाद में भक्ति कर लेंगे, तो उसमें एक बहुत बड़ा रिस्क बताते हैं प्रहलाद महाराज। ये सामान्य जन को शिक्षा दी जा रही है, सामान्य जन लोग के लिए प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि होता क्या है, क्यों अहर्निश कठिन श्रम नहीं करना है संसार में सुख प्राप्त करने के लिए, क्योंकि संसार में यदि हम रहते हैं अहर्निश कठिन श्रम करते हैं संसार के बीच में रहकर सुख प्राप्त करने के लिए, तो एक बहुत बड़ा बंधन हो सकता है। बंधन क्या हो सकता है, जो कि होता है, हो सकता नहीं होता है। और क्या होता है तो बता रहे हैं, कथम प्रियाया अनुकंपिताया संगम रहस्यम रुचिरांश मंत्रां सुहृत्सु तस्ने हसितम शिशूनाम कला क्षराणाम अनुरक्त चित्त पुत्रां स्मरणस्ताम दुहृतुत हितत्या भ्रातृन स्वशिशवा पितरौ न दीनो गृहान मनोज्ञो रूपरिच्छ दांश वृत्तिश्च कुल्या पशुवृत्त्य वर्गान। तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कि क्योंकि इस आसक्ति रूपी गांठ को बाद में काटना बहुत मुश्किल हो जाता है किसी के लिए, यदि हम भक्ति का अभ्यास नहीं कर रहे हैं, सिर्फ अपना तथा कथित जिस परिवेश में रह रहे हैं उसको संहारने कोशिश कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि जीव का एक बहुत बड़ा आसक्ति, एक बहुत बड़ा बंधन बन जाता है, जिसको हृदय ग्रंथि बोलते हैं। और उस हृदय ग्रंथि को काट पाना किसी के बस की बात नहीं है। कैसे काटेगा, प्रहलाद महाराज बोलते हैं, व्यक्ति कैसे काटेगा, क्या भला ऐसा मनुष्य जो अपने परिवार के प्रति अत्यधिक स्नेहिल हो और जिसके हृदय में सदैव उसकी आकृतियां रहती हो, वह किस प्रकार उसका संग छोड़ सकता है। यदि सदैव चिंतन करता हो अपने बिजनेस के विषय में, अपने परिवार के विषय में, अपने घर के विषय में, अपने रिश्तेदार के विषय में, जिसकी वजह से उसको भक्ति करने का अभ्यास नहीं मिल पा रहा है, क्या करें, हम तो संसार में फंसे हैं महाराज, बोलते हैं ना। परम पूज्य राधा गोस्वामी महाराज से महाराज बोलते हैं कि कई लोग हमारे पास आते हैं, बात करते हैं और बोलते हैं महाराज हम तो गृहस्थी वाले हैं, फंसे हैं ना। तो महाराज बोलते हैं अच्छा, आपको अनुभव है कि आप फंसे हैं तो आपको निकलना भी चाहिए ना, कि फंसे ही रहेंगे। यदि मालूम है कि फंसे हैं तो निकलने का भी प्रयास करो। हाँ, लेकिन जीव निकल नहीं पाता, यदि अभ्यास नहीं कर पा रहा तो बहुत कठिन है। तो कठिनता क्या है, क्यों नहीं निकल पाता है, क्या समस्या है, तो प्रहलाद महाराज बोल रहे हैं कथम प्रियाया अनुकंपिताया कि वो कैसे छोड़ सकता है उस आसक्ति को। किस आसक्ति को, विशेषकर अपनी पत्नी को, जो सदैव बहुत ही सजग रहती है पति को एकांत में सुख देने के लिए, भोजन देने के लिए उसकी चिंता करती है, सदैव उसकी चिंता करती है, तो उस पत्नी को कैसे छोड़ सकता है जिसने जीवन भर उसकी चिंता किया है, उसमें अनुरक्त हो जाता है। और क्या आसक्ति है, जो प्रबल आसक्ति है, कैसे छोड़ सकता है। दूसरा बताते हैं, सुहृत्सु तस्ने हसितम शिशूनाम कला क्षराणाम अनुरक्त चित्त, कि जो पिताजी लोग होते हैं उनकी जो बुद्धि होती है छोटे छोटे बालकों की तोतली बोली में। परम पूज्य गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज इस पे लेक्चर दे रहे थे, तो बोलते हैं कैसे कोई पिता छोड़ सकता है जब उसका छोटा सा बेटा, छोटा सा बालक जो भी तोतली बोली में बोलता है, वो बोलता है पापा, और पापा कह के आके गोदी में बैठ जाता है, पिताजी गले लगा लेते हैं, उसको चूमने लगते हैं, तो वो उस आसक्ति को कैसे छोड़ सकता है, कैसे वो भूल सकता है, कैसे उस बालक को छोड़ सकता है। और नहीं छोड़ सकता उस तोतली बोली को, लोगों को तोतली बोली बोलो बोला बोलो बेटा फिर से बोलो पापा, तो उसको सुनने में अच्छा लगता है और उसी में आनंद लेता है, कैसे उसको छोड़ सकता है, वो नहीं छोड़ सकता है। और क्या है आसक्ति, कई लोगों की आसक्ति अपने वृद्ध माता पिता में हो जाती है, उसमें रुक जाते हैं, वो कैसे छोड़ सकते हैं। और पिताजी की आसक्ति किसमें रहती है, अपनी पुत्रियों में, भले ही पुत्रियां शादी विवाह हो जाए, अपने ससुराल चली जाएं, लेकिन फिर भी पिता और बेटी का संबंध आपस में रहता है, वो आसक्त रहता है, पिता जाता है बार बार देखने के लिए, उसका सुख दुख का ध्यान रखने के लिए, वो उसी में आसक्त रहता है, वो कैसे छोड़ सकता है। इसके अलावा हाँ, घर में अनेक अलंकृत साज समाज है, बंगला है, गाड़ी है, BMW कार है, हाँ, तो वो कैसे छोड़ देगा, किसके ऊपर छोड़ देगा, अरे इतना मेहनत किया, इतना संघर्ष किया, दिन रात एक करके मैंने बनाया है, अभी हमारे जाने के बाद कौन देखेगा, क्या होगा, उसी में सुधर कैसे छोड़ सकता हूँ मैं, इतना बड़ा बिजनेस किसके हाथ में छोड़ दूँ, लड़के अभी जानकार नहीं है, सब गवा देंगे, मेरी मेहनत पे पानी फेर देंगे, नहीं छोड़ पाता है, उसी में रुक जाता है, कैसे छोड़ सकता है। इसके अलावा घर में अनेक पशु हैं, नौकर हैं, उनको कैसे छोड़ सकता है, और पशु और नौकर के बीच में उसको एक आराम की जिंदगी मिलती है, कौन जाएगा तपस्या करने के लिए, घर भी हमारा ठीक है, घर ही मंदिर बना है, घर ही हमारा मंदिर है, उस आराम, ऐसे आराम की जिंदगी कोई नहीं छोड़ना चाहता है, वहां पे आसक्ति हो जाती है। और बता रहे हैं कि इस प्रकार जो आसक्त गृहस्थ, ध्यान रहे कि आसक्त गृहस्थों की बात कही जा रही है, सामान्य सब भक्तों के लिए नहीं कही जा रही है, जो कि सामान्य लोगों से जो हम बोलते हैं, प्रवचन देते हैं, उनको समझाते हैं कि भक्ति करो, जीवन का उद्देश्य भगवान की भक्ति करना, ऐसे लोग हम लोग को बार बार बोलते हैं हम कैसे भक्ति करें, टाइम नहीं है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि एक बैक टू गार्डन मैगजीन पत्रिका में एक लेख लिखते हैं शुरुआती दौर में कि टाइम नहीं है, ये आज की सबसे बड़ी बीमारी बन चुकी है, लोगों को ये बीमारी ग्रस्त कर चुका है, ग्रह की तरह खा चुका है। लोग बोल रहे हैं टाइम नहीं है, लेकिन लोग सोच रहे हैं, सोच नहीं पा रहे हैं कि किसके लिए टाइम नहीं है। जो हम नहीं हैं, अर्थात हम शरीर नहीं है, और उसके लिए हमारे पास 22 घंटा टाइम है, और जो वास्तव में हम हैं, जिसके कल्याण के लिए मनुष्य जीवन मिला है, उसके लिए लोग सहजता से बोल देते हैं हमारे पास टाइम नहीं है। ये सबसे बड़ा रोग लग चुका है संसार में अभी, इस रोग की कोई दवाई नहीं समझ में आ रही है। प्रभुपाद जी बोल रहे हैं क्या करें, कैसे प्रचार करें, कैसे लोगों को समझाएं, इतना गहरा रोग लग चुका है लोगों को। तो इस प्रकार इस तथा कथित गृह क्षेत्र समाज में रहते हुए जो व्यक्ति हो कैसे हो जाता है, वो रेशम के कीट की भांति हो जाता है, जो अपने ही जाले में बुन के अपना शरीर त्याग देता है और जीवन के वास्तविक उद्देश्य को नहीं समझ पाता है। इसलिए प्रहलाद महाराज बोलते हैं कि इसलिए हे मेरे मित्रों, हे दैत्य पुत्रों, इतना तो क्लियर है कि बिना भगवत ज्ञान के, बिना भगवान की भक्ति के, कोई भी किसी भी काल या किसी देश में अपने आप को मुक्त नहीं कर सकता इस संसार से, क्योंकि संसार का जो जंजाल है बहुत विचित्र है, उसको काटने का शस्त्र है भगवान की भक्ति, भगवान के विषय में ज्ञान प्राप्त करना, और तुम लोग के अंदर श्रद्धा है, मेरे सुनने की श्रद्धा है, इसलिए मैं तुम लोग को ये ज्ञान दे रहा हूं। और इसके बाद प्रहलाद महाराज ने उन लोगों को ज्ञान दिया। तो जब ज्ञान दे दिया, इतना परिपक्व ज्ञान दिया, और ज्ञान देते देते बालकों की मति भी कृष्ण में लग गई, तो अचानक बालकों ने एक चीज पूछा कि प्रहलाद, जो सन नंबर का पढ़ाते थे, हम लोग एक ही साथ क्लास में बैठते थे, और तुम हम ही लोग के साथ में रहते हो, और ऐसा भी नहीं देखा कि आपके माता पिता ने सेपरेट कोचिंग क्लासेस की व्यवस्था की थी आपके लिए, कोई आपको ट्यूशन पढ़ाया जाए, जो क्लास हमारे लिए होता था वही क्लास तुम्हारे लिए भी होता था, जो हम पढ़ते थे वही तुम भी पढ़ते थे, हम लोग साथ में ही रहते थे। तो समझ में नहीं आया है कि ये जो क्लास अभी आपने सुनाया मुझे बैठा के, ये क्लास कहाँ से सीख लिया आपने, ये कौन क्लास दिया, कहाँ से पढ़ा, ये विद्या कहाँ से आ गई आपको, कौन सिखाया आपको। तो इसके बाद प्रहलाद महाराज अपने जीवन के विषय में बताते हैं कि कैसे मैंने विद्या सीखा नारद जी की कृपा से। तो अध्याय 7 प्रारंभ होता है, और अध्याय 7 के प्रारंभ में पहले प्रहलाद महाराज अपने जीवन के विषय में बताते हैं कि क्या क्या हुआ था, कैसे हिरण्यकश्यपु जब तपस्या करने गए थे, मैं माँ के गर्भ में था, और उस समय इंद्र आते हैं हमको लेके जाते हैं मारने के लिए, लेकिन नारद जी का आगमन होता है, नारद जी बोलते हैं कि नहीं, ये भगवान का विशुद्ध भक्त है, तुम चाह के भी नहीं मार सकते हो, क्योंकि भगवान की बहुत कृपा है, तुम्हारे मारने से नहीं मरने वाला है। और इसके बाद फिर उनको हमारी माँ को लेकर चले जाते हैं अपनी कुटिया में, और वही हमारी माँ नारद जी की सेवा करती है, और नारद जी भगवान के विषय में बताया करते थे, और वही ज्ञान हमने सुना है, और वही ज्ञान सुना है। जब ऐसा बताना प्रारंभ करते हैं तो इस ज्ञान की शुरुआत करते हैं, क्या सुना, कहाँ शुरू किया था सुनने के लिए, वहां तो भक्ति की महिमा बता देते हैं, लेकिन ज्ञान सुनना कहाँ से प्रारंभ किया, तो आत्मा और शरीर के विषय में ज्ञान देना प्रारंभ करते हैं नारद जी। बोलते हैं कि यहां से उनका प्रवचन चालू हुआ था। भगवत गीता में भी देखते हैं कि भगवान प्रवचन देना प्रारंभ करते हैं, अर्जुन को समझाना प्रारंभ करते हैं, कहां से, असोच्यान अनुशोचस्तम प्रज्ञावादान से भाष से गतासुन अगदासुन अनुशोचन पंडिता है, अर्जुन बड़ा बड़ा पंडित की तरह बात कर रहे हो, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, हो सके इतना अच्छा तर्क देते हो लेकिन तुम नंबर एक के मूर्ख हो, अपने आप को पंडित समझते हो लेकिन तुम नंबर एक के मूर्ख हो। मूर्खता क्या है, हाँ, कि तुम उसके लिए शोक कर रहे हो जो शोक करने योग्य नहीं है। जो विद्वान होते हैं वो मृत के लिए, जीवित के लिए शोक नहीं करते हैं, क्योंकि फिर आत्मा का लक्षण बताना प्रारंभ कर रहे हैं, आत्मा कभी मरता नहीं है, आत्मा कभी जीता नहीं है, आत्मा कभी नाश नहीं है, आत्मा ये है, आत्मा वो है, आत्मा वो है, क्योंकि प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि आध्यात्मिक जीवन का ABCD आध्यात्मिक जीवन का शुरुआत ही है देहात्म बुद्धि से ऊपर उठना। हम आध्यात्मिक जीवन प्रगति तब तक नहीं कर सकते हैं जब तक इस स्तर पे ना आए कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, और आत्मा के स्तर पे हमको काम करना है। ये देहात बुद्धि सबसे बड़ा रोग है, इसलिए प्रहलाद महाराज बताते हैं कि नारद जी ने पहला प्रवचन यहां से चालू किया कि हम शरीर नहीं, हम आत्मा है, जो कि 10, 11, 12 से सब प्रवचनों में, ये सब श्लोकों में प्रहलाद महाराज लेक्चर देते हैं। और इस प्रकार शरीर और आत्मा का जो सामंजस्य है, जो गठबंधन है, वो बहुत ही गहरा है। किसी ने प्रभुपाद जी से पूछा कि आप हर प्रवचन में या हर पैराग्राफ प्रभुपाद जी का पढ़े हैं, तो हर श्लोक में प्रभुपाद जी इस बात पे जोर देते हैं, यू आर नॉट दिस बॉडी। तो यही चीज इतना रिपीटेशन क्यों किया जा रहा है? क्योंकि है ये सरल, हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं है, लेकिन इसको आत्मसात करना, इसको जीवन में उतारना, इसको अनुभव करना, ये बहुत ही डिफिकल्ट जॉब है। और सुनते रहेंगे तो हम आत्मसात कर पाएंगे एक दिन। ये बहुत ही कठिन विषय है, इसको जीवन में आत्मसात कर लेना, देहात बुद्धि से निकलना कि हम देह नहीं है, हम आत्मा है, इस स्तर पे आना बहुत ही मुश्किल काम है। लेकिन भक्ति का लक्षण यही है कि हमको देहात बुद्धि से बाहर निकलना है। तो मानो प्रवचन चालू किए, प्रहलाद महाराज नारद जी के प्रवचन को सुना रहे हैं कि नारद जी ने हमको आत्मा और शरीर के विषय में बताना चालू किया, और बहुत ही बड़ा बंधन है जीवात्मा के लिए इस शरीर के प्रति आसक्ति, इसमें बंध जाता है। तो मानो सपाठी लोग पूछ रहे हैं कि निकलते कैसे, कैसे निकलना है? तो निकलने का एक ही माध्यम है, एक ही एक विधि है। बहुत सारे विधियां हैं आत्मा और शरीर के विषय में ज्ञान देने के लिए, कर्मयोग है, ज्ञान योग है, ध्यान योग है, सब विधि जो गीता भगवान ने बताया है वो आत्मा और शरीर के विषय में डिफरेंस बताने के लिए ही बताया है। लेकिन निकलने की जो सबसे उपयुक्त विधि है वो कल के श्लोक में हम लोगों ने सुना, क्या बता रहे हैं कि तत्रोपाय सहस्त्राणामयम भगवतो दितम। सहस्त्राणाम मतलब हजारों विधियां हैं इस ज्ञान को प्राप्त करने के लिए कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। इसको समझाने के लिए हजारों ऋषि मुनि हैं, बहुत सारे ग्रंथ हैं, पुस्तक हैं, जिसके माध्यम से ज्ञान दिया जाता है कि हम आत्मा हैं, हम शरीर नहीं हैं। लेकिन तत्रोपाय सहस्त्र, लेकिन उन सब सहस्त्रों उपाय में एक उपाय, कौन सा उपाय? भगवतो दीद, भगवान के प्रति जो भक्ति है, यही उपाय सबसे सर्वश्रेष्ठ है। यदि ईश्वरे भगवती, भगवान ईश्वर के प्रति, भगवान कृष्ण के प्रति भक्ति सबसे श्रेष्ठ है। क्या, किस चीज के लिए? आत्मा को इस शरीर के बंधन से मुक्ति दिलाने के लिए। सबसे सर्वश्रेष्ठ विधि क्या है? भगवान की भक्ति। जैसा कि श्रीमद भगवत गीता के अध्याय 12 में भी अर्जुन यही प्रश्न पूछता है कि आपका साक्षात्कार करने के लिए दो विधि हैं, कुछ लोग आपको सकारात्मक रूप में पूछते हैं, कुछ लोग आपकी उपासना निराकार के रूप में करते हैं, तो कौन सी विधि श्रेष्ठ है? तमाम भक्ति का वर्णन करते हैं। उसी प्रकार आत्मा और शरीर के विषय में समझने के लिए बहुत सारे धर्म है, ज्ञान है, ऋषि है, मुनि है, बहुत सारे प्रवचन है, लेकिन सबसे उपयुक्त विधि क्या है? जिससे कि भगवान में हमारी रति उत्पन्न हो जाए। जब भगवान में रति उत्पन्न होगा, भगवान में प्रेम उत्पन्न होगा, तो हम इस शरीर को भूल सकते हैं, इस शरीर की अवस्था से हम ऊपर जा सकते हैं। अपने वास्तविक जीवेर स्वरूप है कृष्ण नित्य दास, भगवान की दासता में स्थिर हो सकते हैं। तो मानो फिर उनके दोस्त लोग पूछते हैं कि ठीक है, भक्ति सबसे उपयुक्त विधि है, तो भक्ति कैसे की जाए, भक्ति कैसे शुरू होगी, भक्ति का मतलब क्या है, भक्ति का आरंभ क्या है, भक्ति आरंभ कैसे किया जाए? तो उस संदर्भ में आज का श्लोक चालू होता है कि भक्ति कैसे प्रारंभ की जाए। तो भक्ति कैसे प्रारंभ की जाए, उसका सबसे पहला लक्षण बताते हैं, गुरु शुश्रूषया। सबसे पहला क्वालिफिकेशन, पूरा श्लोक इसी पे डिपेंड है, आगे का जितना भी शब्द है। तो बोलते हैं गुरु शुश्रूषया, क्या कि गुरु प्रामाणिक गुरु की सेवा द्वारा। सबसे पहला लक्षण है कि गुरु की सेवा द्वारा। जैसे कि चैतन्य चरितामृत में एक शब्द आता है ना, कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, कृष्ण प्रेम जन्मेते हो पुनः मुख्य अंग। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है साधु संग, साधु संग कृष्ण की भक्ति, कृष्ण के प्रति प्रेम कहां से आएगा, उसका जड़ क्या, उसका शुरुआत क्या है? तो बोलते हैं साधु की संगति। और हमारी साधु की संगति अच्छी हो रही, साधु संगति हमारा प्रोग्रेस हो रहा है, हम विकास कर रहे हैं भक्ति की तरफ, उसका लक्षण क्या है? तो बोलते हैं कृष्ण प्रेम जन्मे, कि आपके हृदय में साधु संगति के द्वारा यदि कृष्ण प्रेम उदित हो रहा है, कृष्ण के प्रति आसक्ति बढ़ रही है, कृष्ण के प्रति प्रेम निर्माण हो रहा है, तो आपकी साधु संगति अच्छी हो रही है, ये उसका लक्षण है। कृष्ण भक्ति जन्म मूल है या साधु संग, कृष्ण की भक्ति का जो मूल है, जो शुरुआत है वो साधु संगति, और साधु संगति में यदि हमारा कृष्ण प्रेम बढ़ रहा है तो वो साधु संगति का लक्षण बताया गया है। तो इसी संदर्भ में गुरु शुश्रूषा शब्द की व्याख्या करते हुए प्रभुपाद जी तात्पर्य में लिखते हैं कि वास्तव में गुरु, प्रामाणिक गुरु स्वीकार किए बगैर हम भक्ति जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, भगवान श्रीमुख अपने श्रीमुख से स्वयं इस बात को कहते हैं कि अर्जुन यदि तुम आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करना चाहते हो, यदि मुझे प्राप्त करना चाहते हो, तो लक्षण क्या है? तद्विधि परिपातेन परिप्रश्नेन सेवया, कि तुम गुरु की शरण में जाओ, गुरु की सेवा करो और गुरु से जिज्ञासा करो, वो तुम्हें तत्व का दर्शन करा सकते हैं। तो गुरु की सेवा, गुरु की महिमा हर पुराण में, हर वेद में, गीता में, भागवत में, हर जगह सर्वत्र गाई गई है, गुरु की सेवा, गुरु पादाश्रय। तो प्रभुपाद जी भक्ति स्वामी सिंधु का एक श्लोक कोट करते हैं, गुरु पादाश्रय तस्मात कृष्ण दीक्षाद दीक्षणम विश्रम भरण गुरु सेवा साधु वर्तमानुवर्तनम, कि भक्ति योग का प्रारंभ करने के लिए गुरु के चरणों का आश्रय लेना बहुत आवश्यक है। तो थोड़ा चर्चा करेंगे गुरु की सेवा या गुरु पादाश्रय या गुरु शुश्रूषा का वास्तविक मतलब क्या है, क्या है गुरु की सेवा का मतलब, क्या है गुरु के सानिध्य में रहने का मतलब, क्या है गुरु के चरणों के आश्रित रहने का मतलब। तो गुरु की सेवा करना मतलब गुरु की आज्ञा का पालन करना, गुरु के साथ रहना और गुरु के पास रहना, ये दोनों में अंतर है। गुरु के साथ रहना और गुरु के पास रहना, गुरु के साथ रहना मतलब गुरु के साथ रहना और गुरु के पास रहना में सर्वश्रेष्ठ बताया गया है गुरु के साथ रहना। गुरु के पास रहना, जैसे कि प्रभुपाद जी तात्पर्य में आप लोग ध्यान दिए, अगर प्रभुपाद जी लिख रहे हैं कि गुरु शुश्रूषा शब्दों का अर्थ है कि वह स्वयं गुरु को शारीरिक सुविधाएं प्रदान करके, जैसे स्नान कर रहे हैं, गुरु महाराज स्नान कर रहे हैं, खिलाना है, पिलाना है, नहलाना है, उनके शरीर का मार्जन करना है, शरीर की सेवा करनी है, मालिश देना है, जितना भी शरीर संबंधित सेवा है, उनके कपड़े की सफाई, उनके रूम की सफाई, वो भी गुरु शुश्रूषा है, गुरु के साथ रहना अर्थात गुरु की सेवा करना वो भी है। लेकिन गुरु के साथ रहने में और गुरु के पास रहने में डिफरेंस है, और महत्व ज्यादा दिया गया है गुरु के पास रहना, गुरु के साथ रहना। और गुरु के साथ रहने का आचार लोग बताते हैं मतलब है कि गुरु की आज्ञाओं को अपने हृदय में आत्मसात करके उसका पालन करना, हर समय गुरु के साथ रह सकता है व्यक्ति, गुरु के साथ रहना। और गुरु के पास रहना भी ठीक माना गया है यदि सेवा की टेंडेंसी है तो, लेकिन यदि उस शिष्य के अंदर, उस तथा कथित शिष्य के अंदर सिर्फ गुरु के साथ रह रहा है, गुरु के पीछे पीछे घूम रहा है, गुरु के साथ 24 घंटे है, गुरु नहीं है तो विलाप कर रहा है, कह रहे गुरु नहीं है, उनको याद करके रो रहा है, लेकिन यदि उस शिष्य के अंदर गुरु की आज्ञाओं को पालन करने का इच्छा नहीं है, गुरु जो उपदेश दे रहे हैं उसके रास्ते पर नहीं चल रहा है, गुरु जो समझा रहे उसको समझ नहीं रहा, सिर्फ गुरु के साथ रह रहा है लेकिन उसका हृदय परिवर्तित नहीं हो रहा है, तो ठीक नहीं माना गया है। उस शिष्य की तुलना करेले से की गई है, जैसे करेला, करेला का झाड़ जो होता है लते का झाड़ होता है, उसको चढ़ने के लिए किसी न किसी सहारे की आवश्यकता होती है। तो करेले के झाड़ को चाहे आप अंगूर की झाड़ के सहारे चढ़ा दो, चाहे आप सेब के सहारे चढ़ाओ, सेब के वृक्ष पर चढ़ा दो, चाहे पके हुए आम के वृक्ष पर चढ़ा दो, कहीं भी चढ़ाओ, लेकिन तोड़ के यदि सब्जी बनाओ और किसी भी तरीके सब्जी बनाओ, चाहे कैसे भी फ्राई करो, चाहे जो भी मसाला डालो, लेकिन करेला क्या रहेगा? वो कड़वा ही रहेगा, वो कभी मीठा नहीं बन सकता है। तो उस शिष्य की बात की जा रही है जो गुरु के साथ रहने में बहुत आनंद दिखाते हैं लेकिन गुरु की आज्ञाओं को आत्मसात नहीं करते हैं, गुरु की आज्ञाओं को लेकर नहीं चलने का प्रयास कर रहे हैं, गुरु के साथ में हर समय है। हाँ, वो जो करेला का झाड़ है वो अंगूर के साथ में बढ़ रहा है, एप्पल के झाड़ पे चढ़ रहा है, मैंगो के झाड़ पे चढ़ रहा है, लेकिन वो चेंज नहीं हो रहा है, वो गुरु की आज्ञाओं को, गुरु के उपदेश को अपने जीवन उतारने का प्रयास नहीं कर रहा है, तो शिष्य करेले की भांति है, वो ठीक नहीं है। और एक शिष्य है जो गुरु के पास नहीं है लेकिन गुरु के साथ है, जैसे प्रभुपाद जी अतिथि प्रवचन में बोलते थे
कि ये हमारे गुरु महाराज की आज्ञा है, मैं अपने गुरु महाराज की इच्छा पूरी कर रहा हूँ, ये मेरे गुरु महाराज का आदेश है, अर्थात उनकी आज्ञाओं को, उनके आदेश, उनके उपदेश को अपने जीवन में आत्मसात करके उसके सहारे अपना जीवन चलाने का प्रयास कर रहे हैं, और वो शिष्य सर्वश्रेष्ठ माना गया है। वो शिष्य गुरु के साथ जो रह रहा है उसे कहीं श्रेष्ठ ये शिष्य माना गया है जो गुरु के साथ रहता है, अर्थात गुरु की आज्ञाओं का पालन करता है। तो गुरु शुश्रूषा मतलब गुरु से सुनना, वाक सेवा होती है, वपु सेवा होती है, वपु सेवा और वाणी सेवा, और वाणी सेवा को वपु सेवा से कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंस माना गया है, क्योंकि उससे आत्मा कल्याण होता है, उसमें आत्मा की शुद्धिकरण होती है। तो दोनों अवसर हमको मिल जाए तो करना चाहिए, लेकिन महत्वपूर्ण है गुरु की आज्ञाओं को आत्मसात करके उनकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन यापन करने का प्रयास करना, यह है गुरु शुश्रूषा का मतलब। और यही भक्ति जीवन में आध्यात्मिक जीवन प्रगति करने का मूल मंत्र है, कि कितना हम अपने गुरु की आज्ञाओं के प्रति समर्पित हैं, कितना अपनी गुरु महाराज की आज्ञाओं को हम वहन कर रहे हैं, उनकी इच्छाओं के अनुसार अपना जीवन यापन कर रहे हैं। इस प्रकार आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाओं का हमारे भक्ति जीवन में महत्व बताया गया है। तो एक गुरु के संदर्भ में या साधु संदर्भ में, साधु संगति संदर्भ में एक हम श्लोक बोलेंगे श्रीमद् भागवतम से, इसके बाद हम समापन करेंगे। और ये उक्ति है मुचकुंद महाराज की। मुचकुंद महाराज अपनी प्रार्थना में बोल रहे हैं कि वास्तव में हमारे जीवन में साधु संघ की कितनी आवश्यकता है, एक आध्यात्मिक गुरु को स्वीकार करने की कितनी आवश्यकता है। तो मुचकुंद महाराज अपनी प्रार्थना में बोल रहे हैं, भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवे जनस्य तद्धर्च्युत समागम तत्संगमो यर्हि तदेव सद्गतो परावरेशे त्वयि जायते मति। भवापवर्गो भ्रमतो यदा भवेद, भ्रमतो जीव भ्रमण कर रहा है, घूम रहा है संसार में, नाना योनि में भ्रमण कर रहा है, नाना दुख जन्म मृत्यु जरा व्याधि चक्कर में घूम रहा है संसार में। भवापवर्गो, इस पवर्ग रूपी संसार में, पवर्ग हम लोग सुन चुके हैं कई बार, प प ब भ म, जहाँ ये लगा हुआ है पवर्ग लगा हुआ, इस पवर्ग रूपी संसार में जीव अनादि काल से भ्रमण कर रहा है। भ्रमतो यदा भवेत, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है, घूमते जा रहा है। और जनस्य तर्धक्षुत समागम, लेकिन ये पवर्ग, ये भ्रमण उसका रुक सकता है या रुक जाता है, ये पवर्ग से रुक जाता है, वो बच जाता है इस संसार में दोबारा आने से। कैसे बच जाता है? सत्समागम, कि जिस दिन वो सत्पुरुषों के साथ संगति करता है, जिस दिन से उसका साधु संघ चालू हो गया, साधु संघ सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संघ है सर्व सिद्धि है, इसलिए साधु संघ की महत्ता गाई गई है। उसी दिन से, जिस दिन से वो सत्संग करने लगा, साधु के बीच में उठने लगा, बैठने लगा, उनके मुख से सुनने लगा, तो उसका क्या होता है? ये भ्रमतो यदा भवेत, भवा पवर्ग भ्रमतो, इसका पवर्ग खत्म हो सकता है, शमन हो जाता है, रुक जाता है। सत्संग में यही तदैव सदगतो परावरेशे त्वय जायते मति। तो कैसे रुक जाता है? कोई पूछ सकता है कि साधु संगति कर रहे हैं तो कैसे पवर्ग रुक गया, कैसे भ्रमण रुक जाएगा? तो बोलते हैं, सत्संग में यरी तदैव सदगतो, कि ज्यों ही वो सत्पुरुषों की संगति प्रारंभ करता है, उनके साथ में रहना प्रारंभ करता है, उनके मुख से गीता भागवत सुनना प्रारंभ करता है, शुद्ध भक्तों की संगति से, तो क्या होता है कि उनके आश्रय में आके आपके विषय में सुनने से, क्योंकि साधु संगति में क्या होगा, वहां तो न्यूज़पेपर का चर्चा नहीं होगा, वहां तो मैच क्रिकेट का चर्चा नहीं होगा, वहां तो राजनीति की चर्चा नहीं होगा, वहां चर्चा क्या होगी? वहां सत्कथा की चर्चा होगी, शाश्वत सत्वत संहिता से चर्चा होगी, गीता भागवत से चर्चा होगी। अर्थात वो चर्चा किसके लिए करेंगे? आपकी दिव्य क्रियाकलापों के विषय में चर्चा करेंगे, आपकी लीला के विषय में चर्चा करेंगे। और जब आपकी कथा, आपकी लीला जीव सुनने लगता है, उसमें मति उसकी आती है, तो क्या करते हैं कि तत्परावेशो त्वयि जायते मति। तो धीरे धीरे अपने आप बिना प्रयास के जो ही जीव सुनना प्रारंभ करता है आपके विषय में शुद्ध भक्तों के मुंह से, तो त्वयि जायते मति, स्वाभाविक उसकी मति आप में चली जाती है, सिर्फ सुनने मात्र से आपकी महिमा, आपकी कथा, आपकी लीला सुनने मात्र से जीव की मति आप में लग जाएगी। और इस सुनने का अवसर कहां मिलता है?
साधु संगति में मिलता है। इसलिए साधु संगति की गुरु की जीवन में आवश्यकता बताई गई है। कैसे भी हो, कहीं भी हो, हमको गुरु स्वीकार करना चाहिए, साधु संगति स्वीकार करना चाहिए, क्योंकि उसके बगैर भवाप वर्गो भ्रमतो, हमारा भ्रमण संसार में नहीं रुक सकता है। इस संसार में आवागमन का चक्कर नहीं रुक सकता है यदि हमारे जीवन में साधु संगति न हो, गुरु का आश्रय न हो। इसलिए समस्त वेद पुराण शास्त्र में गुरु और साधु की महिमा का गुणगान है, कहीं कहीं भगवान से भी ज्यादा उनका गुणगान है, क्योंकि उनकी कृपा से भगवान मति लगती है। हम भगवान को नहीं जान सकते, हम भगवान राधा राजवारी को नहीं देख सकते हैं, नहीं जानते हैं, लेकिन किसी कृपा से हम जानने का प्रयास कर रहे हैं, समझने का प्रयास कर रहे हैं, थोड़ी बहुत आसक्ति निर्माण हुई है। यह प्रभुपाद जी की कृपा से, प्रभुपाद जी के कृपापाद शिष्यों के संपर्क से आने से हमारी मति लग रही है। नहीं, इसके पहले हम लोग देखें तो हमारी मति भी कहीं थी, हम भी कहीं कहीं लग रहे थे और उस मति से हम फिर भ्रमण में फंसने वाले थे। लेकिन यदि आज बचने का प्रयास कर रहे हैं और साथ बच जाएंगे तो कैसे? इसका शुरुआत हुआ साधु संगति से, एक प्रामाणिक शुद्ध भक्त की संगति से। यह पवर्ग रुक सकता है और इसके लिए जीव को बहुत सतर्क होना चाहिए। ये जीवन का वास्तविक उद्देश्य है। प्रहलाद महाराज का प्रवचन, आज का प्रवचन में, प्रवचन आगे भी है लेकिन आज का प्रवचन यही खत्म करते हैं कि आध्यात्मिक जीवन में प्रगति करने के लिए जो सबसे मुख्य मार्ग है वो है आध्यात्मिक गुरु की शरणागति। और आध्यात्मिक गुरु की शरणागति मतलब आध्यात्मिक गुरु की आज्ञाओं का पालन करना। एक अच्छा शिष्य वही है जो अपनी आध्यात्मिक गुरु की बातों को अपने हृदय में लेके चलता है, सदैव उनकी बातों की याद रखता है, वो ज्यादा सर्वश्रेष्ठ बताया गया है। गुरु शुश्रूषया। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की, श्री श्रीधर राजगारी भगवान की, गौर प्रेमानंदे।